الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے بندوں کے حقوق آج جن حقوق کا بیان ہے اس میں کچھ حقوق ہیں کچھ آداب ہیں آداب سے مراد طریقہ کار اسلام جو پسند کرتا ہے کہ اس شعبے کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کن کے حقوق ہیں اور کن کے بارے میں یہ آداب ہیں اس کا تعلق ہے کمانے والے لوگوں سے جس میں تاجر بھی شامل ہیں جس میں ملازم بھی شامل ہیں جس میں سیٹھ بھی شامل ہیں اور جس میں کمانے والے ہر طرح کے افراد شامل ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ان پر لوگوں کا حق کیا بنتا ہے ان پر اللہ کا حق کیا بنتا ہے تو مخلوق کا حق وہ بھی پھر اس کے ساتھ جہاں جس کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہاں پر اس تعلق والے کا حق جو تاجر ہے اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے خریدار کا لہذا خریدار کے حقوق ہیں تاجر پر اسی طرح جو کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے تو ملازم کے حقوق ہیں سیٹھ پر اور سیٹھ کے حقوق ہیں ملازم پر اور اسی طرح زندگی کے اور جو کمانے کے اسپیکٹس ہیں جو اس کے ویز ہیں جو اس کی صورتیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں لہذا اس کو تھوڑا سا وسعت کے ساتھ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں بیان کروں گا سب سے پہلی بات ہے محنت کا جذبہ ہونا چاہیے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے کام چوری سستی کاہلی اور کام سے دور بھاگنے سے بچنا چاہیے حدیث مبارک میں اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں بہت سے لوگ کام کرنے سے بھاگتے ہیں بچتے ہیں اور اس کی بجائے وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں جبکہ جو اسلام پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنے اپنے دست و بازو سے کمائیں اپنے ہاتھ سے محنت کریں دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بنیں یہ ہے اسلام کی تعلیمات اس پر چند احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا سوال سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت انہوں نے پیش کی ان کو پیسے چاہیے تھے یا ان کو کچھ کھانے کو چاہیے تھا یا کوئی ضرورت زندگی کی چیز چاہیے تھی تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مال کا سوال کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے تو اس نے کہا جی بس دو چیزیں ہیں غربت ہے فقر ہے دو چیزیں کیا فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ ایک تو ٹاٹ کا بچھونا ہے ایک بچھونا ہے اسی پہ ہم سوتے ہیں اور وہی آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا پانی کا ایک اچھے والا پیالہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ وہ صحابی گئے جا کے دونوں چیزیں پیش کر دی ایک وہ بچھونا اور ایک وہ پیالہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں چیزیں دو درہم میں نیلام کر دی یعنی اس کی بولی لگا کے بیچ دیا اور وہ جو دو درہم ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری صحابی کو دیے اور فرمایا کہ ایک درہم سے تو تم گھر کا کھانا پانی کو چیزیں لے لو کوئی زندگی گزارنے کی جو بنیادی چیز کھانا ہے وہ لے لو اور ایک درہم جو ہے اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ یعنی کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے لوہے والا حصہ وہ خرید کے لاؤ اس صحابی گئے جا کے انہوں نے کچھ کھانا خریدا اور ایک کلہاڑی کا پھل لے کے آ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک लकड़ी पकड़ी और उसके अंदर वो कुल्हाड़ी का फल गाड़ दिया और वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में देते हुए फरमाया कि जाओ इससे जाके जंगल में लकड़ियां काटो और वो बेचो, और उससे जो तुम्हें नफा होगा, उससे जो तुम्हारी कमाई होगी, उससे जिंदगी गुजारो। वो साहबी गए, जाके जंगल से लकड़ियां काटी और लकड़ियां काटने के बाद उसको बेचा। बेचने के बाद क्या हुआ कि 2 हफ्ते बाद वो साहबी जब दोबारा वापस आए तो उनके पास 10 दिरहम जमा हो चुके थे। 1 दिरहम की कुल्हाड़ी थी, लकड़ियां काटी, बेची और 10 दिरहम उनके पास जमा हो गए। 10 दिरहम से मुराद ये हुआ कि जो उसमें से खाने पीने पर दिरहम खर्च हुए वो जुदा रहे, उससे हटकर 10 दिरहम जमा हो गए। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि ये मेहनत की कमाई तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है इस बात से कि तुम लोगों से मांगते फिरो, तुम लोगों से मांगते फिरो और क्यामत के रोज तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने का दाग हो। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीम और हिकमत कि हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगनी, दूसरों पे बोझ नहीं बनना, बल्कि जिस मिनिमम लेवल पे भी जाकर कुछ किया जा सकता है वहां जाके मेहनत कर ली जाए, भले जंगल से लकड़ियां काट ली जाए या आज के जमाने के अतबार से कहें तो भले ठेला लगा लिया जाए, कोई हल्की फुल्की चीज बेच दी जाए, कोई अपने कंधे पर रख के सामान बेच दिया जाए, लेकिन रिस्के हलाल कमाने की कोशिश होनी चाहिए, कमाई में दिलचस्पी होनी चाहिए, कमाई में दिलचस्पी होनी चाहिए, दूसरों के माल पर नजर नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली बात है कमाने वालों के एतबार से जो उनके आदाब के हवाले से है कि वो दूसरों पर बोझ ना बने बल्कि कमाने में दिलचस्पी लें। और फिर इसकी फजीलत क्या है, ये तो था एक अमल बयान किया और फरमाया कि ये बेहतर है इस बात से कि भीख मांगो और क्यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर भीख का दाग लगा हो, ये उससे बेहतर है। इससे हटकर इसके अपने फजाइल हैं और वो फजाइल कैसे हैं और फजीलत भी कैसी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने कोई खाना भी उस खाने से बेहतर नहीं खाया जो खाना उसने अपने हाथ से कमाया। जो बंदे ने अपने हाथ से मेहनत की ना, वो किसान है, वो हल चलाता है या वो ठेला लगाता है तो उसको जोर से घसीटता है, या वो साइकिल चलाता है, या वो कोई इस तरह का काम करता है, या वो मिस्त्री है, मजदूर है, वो वजन उठाता है, बोझ उठाता है। फरमाया कि ये जो हाथ से कमाने वाला है इसकी कमाई हर कमाई से बेहतर कमाई। और उसके साथ एक रेफरेंस देते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाकर खाते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाकर खाते थे। मेहनत करना, कमाई करना, कमाना, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। हर नबी अलैहिस्सलाम की तफसील मौजूद है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताजिर थे, आपने तिजारत फरमाई, और सहाबा इकराम को जिनको भी आप ले लें, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर थे, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर थे, उस्मान गनी बहुत ही बड़े ताजिर थे, अब्दुलरहमान बिन औफ ताजिर थे, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत से काम करते थे, आपने कुछ तिजारत भी फरमाई, आपने जो है कुछ अपने हाथ की मेहनत भी फरमाई, तो आपने बहुत सारे काम किए। तो मेहनत करना ये नबियों की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। एक और हदीस मार कर करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि एक शख्स अपनी रस्सियों से लकड़ियों का गट्ठा बांध कर अपने सर पे ला दे, लकड़ियों का गट्ठा बांध के अपने सर पे ला दे और बेचे। फरमाया कि इस तरह वो अपने चेहरे को भीख की जिल्लत से बचा ले। फरमाया कि ये इससे बेहतर है कि लोगों से भीख मांगता फिरे और कोई उसको दे और कोई उसको ना दे, कोई उसको दे और कोई उसको ना दे। तो मांगने में इज्जत नहीं है, भीख के अंदर इज्जत नहीं होती, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने में इज्जत नहीं है, खा वो दोस्त हैं या वो रिश्तेदार हैं या वो कोई और है। क्यों? इसलिए कि कभी कोई देगा कभी कोई मना कर देगा। नहीं जी आजकल तो हमारे हालात ही तंग है, महंगाई बहुत हो गई है, फलां शह महंगी, फलां शह महंगी है, तो हो सकता है मना कर दिया जाए। या ये हो सकता है कि मजबूरी से कोई दे तो दे लेकिन दिल से ना दे, और देने के बाद दिल में ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे घर का रास्ता ही भूल जाए ये बंदा, दोबारा इधर मुंह ही ना करे। और ये होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ होंगे सखी दाता लेकिन ज्यादा ऐसा ही होता है। बल्कि कहते हैं कि वो किसी से दुश्मनी करनी हो ना तो उससे कर्ज ले लो, या किसी से ताल्लुकात खराब करने हो तो उससे कर्ज ले लो। कर्ज की बात कर रहा हूं, भीख की बात नहीं कर रहा, कर्ज ले ले तो भी ताल्लुकात कशीदा, और वैसे ही पैसे मांग लें तो इसका मतलब है कि अब इसका मुंह उधर उसका मुंह उधर, भले वो पैसे हज के लिए हो, तब भी किसी से लेना जो है ये कोई इज्जत का काम नहीं होता। मजबूरी में कर्ज लेना जायज है, मजबूरी में कर्ज लेना जायज है, लेकिन हद्दल इम्कान उससे बचना चाहिए। और भीख मांगना ये तो एक एक्सट्रीम चीज है, तो मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए, जिसको कहते हैं ना कि वो काम करना जवानों की मौत, मेहनत करना जवानों की मौत है आजकल, कि काम करते मौत पड़ती है, घर में बैठे बिस्तर काटेंगे बिस्तर तोड़ेंगे, और या यही है कि दूसरे जो है ना वो कमा के दे दें, तो ये वाली हरकत जो है ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा इस तरह बाद क्या होता है, कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं, अब पढ़ लिख के थोड़ा सा यानी कि एजुकेटेड हो गए तो अब जो हल्के वाला काम है वो नहीं करेंगे, अब अफसर ही बनेंगे वरना भिखारी रहेंगे। इन बिटवीन कुछ नहीं कि चले अगर नौकरी नहीं मिली तो भाई रिक्शा चला लो, लेकिन रिक्शा चलाना शान के खिलाफ है, तो अब क्या होगा, अफसरी मिली नहीं, छोटा काम करना नहीं, तो क्या होगा, भीख मांगेंगे, दोस्तों से मांगेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे, कोई ऐसे चलते रहेंगे। और ज्यादा दाव चलेगा तो वही दामाद साहब ससुर से मांग लेंगे, और साल भैरवी साहब सारे साहब से मांग लेंगे, ये हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो काम चोरी और ये जो जिल्लत का तरीका है ये नहीं इख्तियार करना चाहिए। मेहनत करने में दिलचस्पी होनी चाहिए, हाँ वो तिजारत की सूरत में हो, या वो मुलाजमत की सूरत में हो, या वो कोई हाथ से कमाई करने की सूरत में हो, लेकिन मेहनत करने के अंदर अपने आप को लगाना चाहिए। तो जो कमाने वाले हजरात हैं उनके आदाब में से एक अदब ये है जो अभी मैंने अर्ज किया है। दूसरी बात है, दूसरी बात शरई फरीजा है। शरई फरीजा ये है कि कमाने के अंदर खा वो तिजारत है या वो मुलाजमत है, बाहर सूरत हराम कमाने से बचे, क्योंकि रिस्क के हराम आखिरत की बर्बादी का जरिया और दुनिया में भी तबाही लाता है, और इस पर जो वईदे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान इसे ना वाकिफ हो कि रिस्क हराम कमाना जो है ये कितना बुरा है। और रिस्क हराम के अंदर क्या क्या शामिल है, कुछ चीजें तो वो हैं जो सबको पता है, जैसे रिश्वत है, रिश्वत हराम, सूद हराम, चोरी हराम, डकैती हराम, ये जो मोबाइल स्नैचिंग है मोबाइल छीन लेना ये हराम, किसी के घर पे कब्जा, किसी के प्लॉट पे कब्जा, किसी के फ्लैट पे कब्जा, किसी के खेत पे कब्जा, किसी की चीज पे कब्जा, सब हराम। तो ये हराम की बड़ी वाजे वादे सूरतें हैं। अच्छा अब आप ये देख लें, इसके साथ एक हराम की और सूरत वो ये है कि कमाने की सूरत हराम हो, यानी कमा तो रहा है लेकिन कमाने की सूरत हराम हो। कमाने की सूरत हराम कि नाजायज काम की जो आमदनी है, जैसे गाना गाने की आमदनी, जैसे फिल्म ड्रामों की आमदनी, वो आमदनी हराम। नाजायज काम का जो इजारा होता है, जो उसकी मुलाजमत होती है, जो उसका काम होता है वो जायज नहीं है, उसकी आमदनी भी हराम। या हराम शायद बेचने के ऊपर किसी की नौकरी है, जैसे शराब बेचने पे कोई नौकरी करता है ये भी हराम। तो नाजायज काम की जो उजरत है वो भी हराम होती है। अच्छा अब ये है कि ये जो इस तरह हराम कमाई है उसकी वईद कितनी शदीद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगो अल्लाह ताला पाक है और वो पाक ही को कबूल फरमाता है, अल्लाह पाक है और वो पाक ही को कबूल फरमाता है, और फरमाया कि उसने मोमिनों को वही हुक्म दिया जो उसने अपने रसूलों को हुक्म दिया। रसूलों को क्या फरमाया, उसने रसूलों को फरमाया या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ए रसूलो ए पैगंबरो हलाल खाना, ए रसूलो ए पैगंबरो हलाल खाना اور اچھے عمل کرنا. تو فرمایا کہ رسولوں سے یہ فرمایا حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو پاکیزہ ہے وہی کھانا. تو رسولوں کو بھی فرمایا کلوا من الطیبات، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کلوا من الطیبات. تو یہ پاکیزہ جو ہے یہ کھانا رسولوں کو بھی حکم اور اہل ایمان کو بھی حکم، اور پھر جو حرام کھانے والے ہیں ان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے. فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، جسم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہے. تو جو مسافر ہو، جو پراگندہ حال ہو، اس کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی. اور اسی طرح جس کے حال ہی خراب ہے، بیچارہ اتنا غربت مسکینی آزمائش کے اندر ہے، تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ بندہ دور سے آیا، بال بکھرے ہوئے، حالت کچھ پراگندہ ہے، تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، جو عام طور پہ ایک طریقہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، بڑی دعا کرتا ہے گڑ گڑا کے، اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی حالت یہ ہے، یہ جو مسافر ہے اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس حرام. مطعمہ حرام والملبسہ حرام ومشربہ حرام، کھانا پینا پہننا یہ حرام ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانا یستجاب لذلک، تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ جب کھانا پینا پہننا حرام ہے تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ جو بدن حرام سے غذا پائے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. تو اب بھلے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آدمی اپنا ایک وہ کر کرا کے جو ہے نا وہ دعا مانگے، اب وہ سادہ لباس ہے یا وہ احرام ہی پہنا ہوا ہے، احرام جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس ہے، لیکن وہ احرام ہے رشوت کی کمائی کا، وہ احرام ہے روڑوں پہ کھڑے ہو کے جو لوگوں سے رشوت لی تھی، وہ احرام ہے اس پیسے کا جو دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رشوت لی تھی، وہ جو کسی کے جو ہے وہ کاغذات ٹرانسفر کرنے کے پیسے لیے تھے حرام، وہ جو ہر کام کے اوپر حرام لینے کی لت اور عادت تھی، وہ جو دفتروں کے اندر کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو کمائیاں ہیں، یہ جو جو ہے وہ گیس کا میٹر چیک کرنے والا اس نے اپنی کمائی بنائی ہوئی ہے، جو بجلی کا میٹر والا اس نے اپنی کمائی بنائی ہوئی ہے، جس نے گیس کا بل لگانا ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے بجلی کا میٹر لگانا ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے آ کے تار بچھانی ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے گیس کی لائن بچھانی ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جو چوکی دار ہے وہ افسر صاحب پہ، وہ بابو صاحب کے پاس فائل جانے کے پیسے لے گا، اور وہ جو فائل جائے گی وہ اس دفتر سے اگلے دفتر تک تب تک نہیں جائے گی جب تک یہاں پر اس کو حرام نہ کھلایا جائے. تو یہ جو حرام خوریوں کے پیسے ہیں، جو تنخواہ بنتی ہے 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 تک، لیکن ماہانہ خرچہ گھر کا چل رہا ہے 2,00,000 روپے، تنخواہ 50,000 ہے، گھر کا خرچہ 2,00,000 روپے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں کی فیس ہی 20,000 ہے، اور 4 بچے 60,000 تو فیس دے رہے ہیں، تنخواہ 50,000 ہے، تو کہاں سے دے رہے ہیں؟ حرام سے دے رہے ہیں اکثر. اسی طرح ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، یا جو سیر و سیاحت میں بھی جا رہے ہیں، لیوش لائف ہے، اچھی گاڑی ہے، مکان شاندار ہے، حالانکہ اس کمائی کے اندر بن ہی نہیں سکتا. تو کہاں سے بنا؟ موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از فرام حرام، وہ حرام سے بنا ہوتا. تو اب ایسے جو نمازی صاحب ہیں، ایسے جو معتمر صاحب ہیں، یہ بھلے جو ہے نا وہ اچھا سا لباس پہن کے اور یہاں سے بڑے عطر مل مل کے جو ہے وہ پہنچے مکہ مدینے، لیکن اور دعائیں مانگے، اور یہاں سے کیا جانے، ہر بندہ جانے والے کو کہہ رہا جی بھائی صاحب دعا کرنا ہمارے لیے، آپ تو عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مدینے میں جا کے دعا کرنا، احرام جا کے وہاں پر حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا، تو یہ دعائیں کرے گا؟ اس کو کہا ہوا ہے نا، افسر کے لیے کر دے گا، ماتحت کے لیے کر دے گا، دوستوں کے لیے کر دے گا، لیکن جس احرام کو پہن کے یہ وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، یہ احرام لباس حرام سے. वो जो वहाँ 5 स्टार होटल के अंदर ठहरा हुआ है उसकी जो चार्जेस हैं, होटल रेंट है, कमरे का रेंट है, वो हराम से है। वो जो वहाँ पर रंग बिरंगे रेस्टोरेंट से खाना खाता है वो पैसे हराम के हैं। वो जो वहाँ ज्यारतों के ऊपर निकला हुआ है और जब मुख्तलिफ ज्यारतें कर रहा है वो टैक्सी के पैसे हराम के हैं, तो करता रहे दुआएं। अल्लाह ताला अपने फजल से वो दुआ भी कबूल कर ले तो हो सकता है। अल्लाह ताला काफिरों की दुआ कबूल कर लेता है, काफिर दुआ करे अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमा लेता है, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन जो हदीस कह रही है कि लिबास हराम, खाना हराम, पीना हराम, समझने को तो ये कह रहा है कि लिबास तो बड़ा शानदार है, क्या जी एहराम है, खाना बड़ा शानदार है, क्या जी वो जो खाना काबा के सामने वाला होटल है वहां से खाना खाता हूँ, या मक्के मदीने के अंदर गुम्बद खतरा के सामने बैठ के मैं खाना खाता हूँ, लेकिन कौन से माल से, माले हराम से। पीता क्या हूँ, भाजी लस्सियाँ मदीने दी, मदीने की लस्सियाँ पी रहा हूँ, लबन पी रहा हूँ, मदीने के जूस पी रहा हूँ, कौन से, वही जो यहाँ दफ्तरों में हराम खाया था, हराम लिया था, जो लोगों के काम करने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए जो लोगों को जलील और रुसवा किया था और हर काम में उनको अटकाया था, तो वो जो उससे कमाई हुई थी उसी के साथ वो लस्सियाँ पी जा रही हैं और वो लबन पिए जा रहे हैं और वो वहाँ पर जूसेस जो है वो उंडेले जा रहे हैं, तो ये क्या है, मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन। वापसी के अंदर ढेरों ढेर खजूरें आ रही हैं, 30 KG खजूरें, अजवा शरीफ, फलां ये वो, किससे, माले हराम से। आबे जमजम मिलेगा जी, कितने का, 7 रियाल का, 8 रियाल का, जो एयरपोर्ट से मिलता है, वो जो 8 रियाल हैं किसके हैं, वही जो किसी गरीब का खून चूसा था उसका आबे जमजम आ गया, तो वो खून जो है वो आबे जमजम में बदला हुआ इस वक्त। तो ये तबर्रुकात और ये तस्बीहात और ये जो है वो रंग बिरंगी चीजें और ये जो है वो वहां से जो मुसल्ले खरीदे और उसको मल मल के वहां से लेके आए और उसको अंदर जाके बिछा के नमाजें पढ़ के आए, अगर हलाल से तो सुभान अल्लाह, सारा आंखों में। हकीकी तबर्रुक तो हमारे दिलों में, हमारी आंखों पे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज पे तो हमारी जान कुर्बान। लेकिन ये जो बंदा करके आया है, ये जो लेके आया, ये किससे लेके आया, तो ये हराम की खजूरें, हराम का आबे जमजम और ये बाकी तबर्रुकात, तो ये फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, इसकी दुआ कहां से कबूल होगी, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि कमाई वाले जो हजरात हैं, अच्छा ये इसमें ताजिर भी आ सकते हैं, ताजिर भी धोखा फ्रॉड कर करके लोगों को जो है वो धोखे दे के और खराब माल बेच के सब कुछ करके धड़ाधड़ पैसे कमा के निकला हुआ है। रमजान का महीना आया और हर गला सड़ा फल दबा के बेचा, डंडी मारी फुल, जानवरों के गोश्त के अंदर पानी भर के बेचा, और अब जब इतने सारे पैसे जमा हो गए तो अब आया जी आखिरी अशरा मदीने में जाके गुजारते। सब ऐसा नहीं करते, बड़े बड़े आशिक रसूल, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े नेक लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो वाकियातन हलाल कमाते हैं और मदीने में जाके निछावर करते हैं, उनकी बात नहीं है, उनकी उनकी तो सआदत है, उनकी सआदत है, बात उनकी है जो हराम कमा के जाते हैं। तो लिहाजा माले हराम कमा के दुआओं की कबूलियत की उम्मीद रखना ये दुरुस्त नहीं है, हदीस मुबारक इससे मना करती है। तो ये जो कमाने के आदाब में से और बल्कि अहकाम में से एक अहम चीज है वो है माले हराम से बचना। तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने तिजारत को फ़रोग देने के लिए, अपना सौदा बेचने के लिए हमेशा सच इख्तियार किया जाए, ना झूठ बोला जाए ना झूठी कसम खाई जाए, बल्कि कसम तो सच्ची भी ना खाई जाए, कसम तो माल बेचने में सच्ची भी ना खाई जाए कि अल्लाह की कसम मैंने खुद जो है ये 500 रुपये KG खरीदा, सच्ची कसम है, फरमाया ये भी ना खाए, और झूठी कसम तो वो तो फिर बिल्कुल ही गुनाह कबीरा हो गई ना, वो तो यमीन खमूस जिसे कहते हैं कि वो गुनाहों में बंदे को डुबोने वाली है। तो ये जो है कारोबार के लिए सच का रास्ता इख्तियार करें, जब सच नहीं बोलते ना तो कुछ अरसे के लिए तो काम चल जाता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलता। एक मरतबा जब पता चल जाए ना इस बंदे ने झूठ बोला है, ये शायद 500 रुपए की है, उसने कहा नहीं जी हमें तो खुद 500 रुपए की पड़ती है, आपको तो कुछ हम प्रॉफिट रख के देंगे ना, 550 की दे दी, 2 दिन बाद पता चला कि नहीं भाई वो तो 450 की मिलती है और असल रेट ही 500 बनता है उसका। जब एक मरतबा किसी दुकानदार का पता चल जाए बंदा दोबारा उसके पास जाता ही नहीं। तो झूठ ना बोले, सच बोले और कसम खाए ही नहीं, ना सच्ची ना झूठी। सच्ची कसम खाना गुना नहीं लेकिन बुरा है, मायूब है कारोबार के लिए, और झूठी कसम खाना वो हराम गुना है कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बात भी नहीं करेगा और ना उसकी तरफ रहमत की निगाह फरमाएगा और ना ऐसे बंदे को पाको साफ करेगा। किसे फरमाया कि जो झूठी कसमें खाकर अपना कारोबार बढ़ाता है, झूठी कसमें खा के अपना माल बेचता है। तो कई बाजार ऐसे हैं कसम के बगैर बात ही नहीं। कई माकूल सुलझे हुए लोग होते हैं बिलफर झूठ भी बोले ना तो कम से कम जरा वो कसम नहीं खाते, और कई ऐसे हैं हर छोटी बात है बड़ी बात है 98 की चीज होती है कसम उसके ऊपर भी खा देते हैं। वो खुदा का नाम जो है इतना छोटा तो नहीं है कि आप इस दुनिया की जो है वो माल की खातिर वो कसमें खाते फिरे कारोबार के लिए। बकिया जहां शरीयत ने इजाजत दी वो अपनी जगह, लेकिन खुदा का नाम जो है वो सिर्फ माल बेचने के लिए इस्तेमाल करें ऐसा नहीं। तो फरमाया कि ऐसे शख्स को जो झूठी कसमें खा के कारोबार बढ़ाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उससे बात करेगा, ना उस पर नजर रहमत डालेगा और ना अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पाको साफ करेगा। तो लिहाजा कारोबार के अंदर इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद एक और हदीस मुबारक, और ये हदीस मुबारक जो है ये ऐसी है कि तजर्बा जिसकी सदाकत पर मजीद गवाह है। वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक ही है, उसमें झूठ का तो कोई सूरत ही नहीं है ना। तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो होके रही, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शायर कहता है कि तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो होके रही, जो दिन को कहा शब तो रात होके रही। तो सरकार तो दिन को भी रात फरमा देंगे रात होके रहेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलाम सच है, लेकिन यहां पर जो एक इजाफी चीज है वो ये है कि ये वो बात है कि तजर्बे से भी जिसका पता चलता है कि ऐसा ही होता है। वो क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कस्में खाने से बचो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया कस्में खाने से बचो, ये चीज वक्ती तौर पर तो तरक्की करवा देती है, माल बिकवा देती है, लेकिन कारोबार से बरकत उठा देती है। माल बिकवा देती है बरकत उठा देती है। इसीलिए जो लोग कस्में खा खा के कारोबार करते ना, तो आप यकीन करें आप यदि मुशाहदा तो करना थोड़ा सा ऐप तलाश करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए वो ना करें, लेकिन सामने आए तो आप देखें गौर करें कि जो लोग बात बात पे कसम खाने वाले होंगे ना कारोबार में, ये कभी खुशहाल नहीं होते, ये कभी खुशहाल नहीं होते। कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, माल बिक रहा है, आ रहा है माल बिक रहा है, लेकिन इन पे खुशहाली आपको नजर नहीं आएगी। ये आपको फकीर ही नजर आएंगे, ये मिस्कीन ही नजर आएंगे। इन ये जिंदगी भर जाना जिसे कहते हैं ना मरु मरु करना, कि मर गया मर गया मर गया मर गया, ये वही करते नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि बरकत उठ गई। तो फरमाया कसमें ना खाओ ज्यादा, कसमें खाने से बचो, वक्ती तौर पे चीज को बिकवा देगी बरकत को मिटा देगी। एक और हदीस मुबारक तिर्मिजी शरीफ और इब्ने माजा की हदीस है, हजरत रिफाआ रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी बाजार के पास से गुजरे तो देखा कि लोग अपने कारोबार में मसरूफ हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। तो फरमाया कि ए ताजिरों, ए ताजिर लोगों, जब आपने ताजिरों को मुखातब किया तो सबने अपनी गर्दनें उठा ली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुखातब है हमसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन ताजिर लोगों का हश्र, ताजिरों का हश्र फाजिरों के साथ होगा। ताजिरों का हश्र फाजिरों के, फाजिर कहते हैं खुले गुनाहगार को, जिसका फिस्क फजूर जो है वो खुला हो, पता हो सबको ये बंदा फासिक फाजिर आदमी है ना, ये फाजिर होता है बेसिकली। तो फरमाया कि इनका हशर फाजिरों के साथ होगा सिवाय उन ताजरों के, ताजरों का हशर फाजिरों के साथ सिवाय उन ताजरों के जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की और भलाई का काम किया और सच पर कायम रहे। परहेजगारी, परहेज की किससे? झूठ बोलने से, धोखा देने से, फ्रॉड करने से, खयानत करने से, झूठी कसम खाने से, जिसने परहेज की नंबर एक। तो ऐसा ताजिर कि जो इन बुराइयों से परहेज करे नंबर एक। नंबर दो, जो अपने तिजारती मामलात के अंदर बिर नेकी करें, भलाई करें, लोगों का ख्याल करें, और तीसरी बात जो सच पर कायम रहे। तो ये क्यामत के दिन जो है ये फाजिरों से जुदा होंगे, वरना जो ताजिर हैं वो उनका हशर फाजिरों के साथ होगा। क्यों? इसलिए कि फाजिर भी गुनाह के मुर्तकिब हैं, और ये जो झूठी कस्में खाने वाले और कारोबार में धोखा खयानत करने वाले हैं तो ये भी गुनाहगारों की जो है वो उसमें आते हैं गिनती के अंदर, तो लिहाजा इनका हशर उनके साथ होगा। इसके बाद जो अच्छा ताजिर है, जो अच्छा ताजिर है कि जो दयानतदारी इख्तियार करता है, जो सच बोलता है, जो लोगों का ख्याल करता है और लोगों की जेब काटने पर उसकी नज़र नहीं है, जो तिजारत के आदाब और अखलाकियात हैं उनकी पाबंदी करने वाला है, उसका क्या है? फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर जो सादिक हो, अमीन हो, जो सच्चा हो और अमानत वाला हो। फरमाया क्यामत के दिन ये नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा, जो सच्चा ताजिर है, भले वो परचून का जो है ना किराने का काम करता है, सच्चा ताजिर, भले वो ठेला लगाता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, तो बजाय लोगों की नजर में वो ताजिर नहीं है। वैसे तो ताजिर ही होता है, जो बेचने वाला वो ताजिर है। अब वो कपड़ा बेचे या वो करोड़ों रुपए की चीज बेचे या वो प्रॉपर्टी बेचे या वो सब्जियां ही बेचे भले, लेकिन क्या है तो तिजारत करने वाला। अब जो ऐसा ताजिर सच बोलेगा और अमानतदार होगा, अब हर एक का दर्जा उसके अतबार से हो जाएगा। सब्जी बेचने वाला है तो भाई गली सड़ी सड़ी ना बेचे, एक्सपायर ना बेचे। फल फ्रूट है तो उसके अंदर वो हरकत ना करे कि नीचे गले सड़े ऊपर साफ सुथरे, और जैसे ही जो है वो गाहक की नज़र इधर उधर हुई या उसको बातों में लगाया तो उसको टपका दिया। या बड़े कारोबार करने वाला है तो वही प्रॉपर्टी वाला जो है इधर से कुछ बोला उधर कुछ बोला और दरम्यान में कुछ हेर फेर की और निकाल दिया। बाद में वो बेचारा खरीदने वाला रो रहा है, यार काम फंसा दिया, कहा मुझे ये था कि ये ऐसा तो वैसा तो जैसा तो तैसा, और अब इसके अंदर ये मसला है। तो जिसने जिस दर्जे के अंदर भी गलत किया तो ये फाजिरों के साथ, लेकिन जो अपने काम में सच्चा और सुच्चा कि खा छोटी चीज बेचे, सच बोले, दयानतदारी अमानत के साथ बेचे, तो फरमाया कि इसका जो हशर है क्यामत के दिन वो नबियों के साथ और सिद्दीकों के साथ और शहीदों के साथ होगा। वजह हिकमत अर्ज कर देता हूं, ये हिकमत लिखी नहीं मैंने पढ़ी लेकिन एक सेंस होता है। हिकमत ये है कि नबी सच्चे थे, सादिक थे, अमीन थे, तो इसने कारोबार में सिद्क और अमानत को इख्तियार किया तो सच्चे नबियों, अमानतदार नबियों के साथ इसका हशर होगा कि सारे नबी सादिक अमीन। दूसरी बात, सिद्दीकों के साथ हशर होगा। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक तो कहते हैं सिद्क वाले को है, सच्चे को है। और दूसरा, जो सिद्दीक अकबर हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो ताजिर थे, जब उनके साथ हशर होगा तो बाकी सिद्दीक भी तो सिद्दीक अकबर के पीछे ही होंगे ना, तो उनके साथ होगा। और शहीदों के साथ इसलिए हशर होगा कि शहीद अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, और ये जो ताजिर हैं ये अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। क्यों? इसलिए कि नफ्स तो यही कहता है कि झूठ बोल के कमा लो जितना कमाना है, लेकिन ये नफ्स खुशी करते हुए, नफ्स को दबा के, ये सच बोल के, नफ्स को दबा के ये अपना माल बेचता है, तो इसने अपने नफ्स को बार बार कत्ल किया, जो नफ्स से मारा है उसे कत्ल किया, तो इसका हशर जो है वो शहीदों के साथ होगा। तो ये है कारोबार के अंदर सच अपनाने का नतीजा। अच्छा, इसके साथ फिर एक और हदीस मुबारक है कि ये जो दयानत और अमानत को इख्तियार करने वाले हैं इनका मामला, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है दो शरीकों में तीसरा शरीक मैं होता हूं। कारोबार जब दो बंदे मिलकर करते हैं तो फरमाया कि तीसरा उनके साथ मैं होता हूं। तीसरे से मुराद ये कि उन पर निगेबान मैं होता हूं, उन पर निगेबान मैं होता हूं। और फरमाया कि जब तीन शरीक हो तो चौथा उनके साथ मैं होता हूं, और जब चार शरीक हो तो पांचवा उनके साथ मैं होता हूं। ये जो आपस में मिलके कारोबार करते हैं, कब तक अल्लाह ताला कब तक उनके साथ है? अपनी ताईद, अपनी नुसरत, अपनी हिमायत, अपने फजल और अपनी रहमत के एतबार से अल्लाह ताला उनके साथ है। कब तक? फरमाया जब तक कोई शरीक अपने साथी के साथ खयानत ना करे। तो आप दो बंदों ने मुश्तरक का कारोबार किया, शिरकत का कारोबार है या मुदारबत का है, एक के पैसे हैं दूसरे की मेहनत है या दोनों के पैसे, तो ये दो बंदे हैं या तीन हैं या चार हैं या पांच हैं या इनसे ज्यादा हैं, जब तक इनमें से कोई बंदा अपने साथी के साथ धोखा नहीं करेगा, रब की रहमत, रब का फजल और रब की ताईद इनके साथ रहेगी। और फरमाया कि जब कोई खयानत कर लेता है, पहले तो था कि खयानत ना करे तो मैं इनके साथ होता, अब फरमाया कि जब कोई साथी अपने साथी के साथ खयानत कर लेता है तो फरमाया कि मैं दरमियान से हट जाता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दरमियान से हट जाता हूं, यानी अल्लाह ताला का जो फजल और जो हिमायत और जो मदद उनके साथ थी वो अल्लाह ताला हटा लेता है। और फिर क्या होता है? फरमाया कि उसकी जगह उनके दरमियान शैतान आ जाता है। तो फिर शैतान तो रंग बिरंगी पट्टियां पढ़ाता है और शैतान फिर आपस के अंदर लड़ाई भी करवाता है, आपस में कीने भी पैदा करता है, आपस में हसद और बुग्ज भी पैदा करता है, फिर कारोबार के अंदर एक दूसरे से खयानत के नतीजे में कत्ल गारतगरी भी होती है, जिसका दाव चलता है दूसरे को घसीट के रख देता है, तो फिर ये सारा कुछ होता है। तो लिहाजा रब की रहमत चाहिए, मदद चाहिए, ताईद चाहिए, तो एक दो बंदे मिलके करें या 100 बंदे मिलके करें, करें दयानतदारी के साथ, अपने साथी को धोखा देने की कोशिश ना करें, और धोखा दिया तो फिर शैतान आया खड़ा। इसके साथ एक और अदब मजीद, ये बड़ी अहम चीज़ है ये, और वो है, ये आदाब में से भी है और आदाब के साथ इसका कुछ ताल्लुक जो है लवाजिमात में से भी है, वो है वक्त की पाबंदी का ख्याल करना। आपका कारोबार है या आपकी मुलाजमत, वक्त की पाबंदी करें। मुलाजमत के तो अहकाम जरा जुदा हैं, जो दुकान है, जो कारोबार है, उसके एतबार से कि जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी भी शय के अंदर तरक्की में मुआविन साबित होती, और जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर वक्त की पाबंदी है। पता चले जी आज 10 बजे दुकान खुली है, कल 11 बजे खुल रही है, परसों 12 बजे खुल रही है, क्यों? इसलिए कि शहजादा साहब आज देर से उठे हैं, कल और देर से उठे हैं, परसों और देर से उठे, तो फिर हो गया कारोबार। इसी तरह दुकान बंद करने के अंदर आज 5 बजे ही दिल किया बंद कर दी, कल 11 बजे बंद कर लेंगे। तो ये जो यूं मन मौजी और मस्तियों के साथ कारोबार है ये नहीं होता। वादे की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, ये बड़ी जरूरी होती है। और उसके साथ जो अगली चीज है वो है जो मुलाजिम है, इनका मामला ज्यादा सख्त है, क्योंकि मुलाजिम क्या होता है? मुलाजिम ने अपना वक्त बेचा होता है। एक बंदा किसी इदारे में नौकर है, मुलाजिम है, अब उसका 8 से 4 तक, 9 से 5 तक उसकी जो मुलाजमत का वक्त है, इजारा है, उसके पैसे लेता है। अब अगर वो वक्त पूरा नहीं देगा तो उतने वक्त की तनख्वाह लेना इसके लिए हलाल नहीं है। तो अब हमारे यहाँ कितना है? सरकारी दफ्तरों में चले जाए जरा, क्या मजा लें कि आपको जरा टाइम पे मिल जाएगा बंदा, तो वक्त पूरा नहीं करेंगे। तो अब वक्त पूरा नहीं तो उसकी कमाई हराम। अच्छा, और अगर अपनी कटौती करवा ली, मिसाल के तौर पर 1 घंटा लेट आ गए, 2 घंटे लेट, कटौती करवा ली, तो ठीक है, अब माल उसकी कमाई तो हराम नहीं। लेकिन बात यह है कि जो बंदा वक्त की पाबंदी नहीं करेगा उसके काम में हर्ज जरूर वाक़ होगा, उसके काम के अंदर खलल जरूर आएगा, और नतीजा यह है कि परफॉर्मेंस है उसकी खराब हो जाएगी, और जो उसका काम का जो मेयार है वो भी खराब हो जाएगा। तो लिहाजा इसके आदाब और इसके लवाजिम में से है कि कारोबारी मामलात में और मुलाजमत के मामलात के अंदर जो वक्त है इसकी कदरों कीमत की जाए। इसी के साथ थोड़ा सा मजीद कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अगले सिलसिले में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें कारोबार के आदाब, ताजरों के हुकूक और जो इससे मुतअल्लिक हुकूक हैं सारे के सारे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।